श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरूभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैतन्य चरितामृत के 21वें दिन के सत्र में। अभी तक हम लोग चर्चा किए हुए हैं मध्य लीला से, पहले दो अध्याय मध्य लीला के, संपूर्ण शेष लीला इनका सारांश। तीसरे अध्याय में महाप्रभु अद्वैताचार्य इनके घर पे संन्यास लेने के पश्चात, चौथा अध्याय वहां से महाप्रभु नीलाचल के लिए निकल पड़ते हैं, चौथे अध्याय में माधवेंद्रपुरी इनकी भक्ति की महिमा का गान, गोपाल जी का प्राकट्य और खीरचोर गोपीनाथ इनका वृत्तांत, पांचवें अध्याय में साक्षी गोपाल इनका वृत्तांत, छठे अध्याय में सार्वभौम भट्टाचार्य इनका उद्धार, सातवें अध्याय में महाप्रभु दक्षिण भ्रमण करने के लिए निकलना और वासुदेव इनका उद्धार, आठवें अध्याय में राय रामानंद संवाद, नौवें अध्याय में संपूर्ण दक्षिण भ्रमण और जगन्नाथपुरी ही पुनः लौटाना, दसवें अध्याय में सारे भक्तों का महाप्रभु से मिलना, ग्यारहवें अध्याय में बंगाल के भक्तों का भी आना और वहां पर बेड़ा संकीर्तन होना, बारहवें अध्याय में गुंडीचा मंदिर मार्जन, तेरहवें अध्याय में जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव, चौदहवें अध्याय में हेरा पंचमी महोत्सव, पंद्रहवें अध्याय में सारे बंगाल के भक्त वापस जा रहे, महाप्रभु हर एक का गुणगान करते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य के यहाँ पर प्रसाद के लिए जाना और अमोघ इनका उद्धार, सोलहवें अध्याय में महाप्रभु का दूसरी बार वृंदावन के लिए निकलना, लेकिन कनाई नटशाला से जो है वो सनातन गोस्वामी इनकी विनती पर पुनः वापस लौट जाना, और सत्रहवां अध्याय जो हमने कल लिया था कि किस प्रकार से अभी महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य इनको साथ में लेके झारखंड जंगल से जाते हैं, कटक शहर से नहीं जाते लेकिन झारखंड से होते हुए वो गुजरते हैं, और किस प्रकार से झारखंड के वन में उन्होंने व्याघ्र और मृग इन दोनों को भी कृष्ण प्रेम में मदमत्त करा दिया और दोनों साथ 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 महाप्रभु के साथ जो है वो आगे जा रहे थे। महाप्रभु को इस जंगल में भी वृंदावन की स्मृति होती है और कई सारे भागवत के श्लोकों का उच्चारण करते हुए वहां से हो जाते हैं, और किस प्रकार से बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के लिए बहुत सुंदर सेवाएं प्रदान करते हैं उनका भी वर्णन हमने जो है वो कल किया, और रास्ते में हमने यह भी देखा कि किस प्रकार से जो है वो महाप्रभु लगभग छल पूर्वक ही वहां से गए, मतलब ये बहाना उन्होंने यह बताया कि मुझे जंगल से जाना है, लेकिन वहां के जो भील आदि जो लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए महाप्रभु वहां से गए थे, और इसके पश्चात महाप्रभु फिर चलते चलते वाराणसी पहुंच जाते हैं, वहां पर चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्रा, इन भक्तों से उनकी मुलाकात होती है और उसके साथ साथ एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण भी उन्हें वहां पर मिलता है, वो भी हमने देखा। और किस प्रकार से आगे चल के महाप्रभु मथुरा में जाते हैं और केशव जी के दर्शन जब उन्होंने किए, वहां पे उनको एक ब्राह्मण मिलता है, सनोड़िया ब्राह्मण। वहां पर महाप्रभु प्रसाद के लिए जाते हैं और बताते हैं कि क्योंकि माधवेंद्रपुरी वहां पर प्रसाद के लिए गए थे, तो इसलिए महाजनों का मैं अनुगमन कर रहा हूं और मैं भी जो है वो आपके यहाँ पर प्रसाद के लिए आया हूँ। इस प्रकार से महाप्रभु जो है वो कई सारे वनों को भी उन्होंने देखा और इस प्रकार से महाप्रभु सारा वृंदावन का जो है वो भ्रमण कर रहे हैं। और हमने देखा था कि किस प्रकार से नीलाचल में जब महाप्रभु थे तो भगवत प्रेम का जो आवेश उनके अंदर था, जब वो वृंदावन के रास्ते से जा रहे थे तो वो वही प्रेम का आवेश 100 गुना बढ़ गया था, और जब उन्होंने दूर से मथुरा को देखा तो वही प्रेम आवेश 1000 गुना बढ़ गया, और जब महाप्रभु साक्षात वृंदावन में प्रकट हुए थे तो वही प्रेम का आवेश 1,00,000 गुना बढ़ गया था। और उस बड़े हुए प्रेम के कारण जो आस्वादन महाप्रभु वृंदावन का ले रहे थे, उसका महिमा का वर्णन करना हम जैसे बद्ध जीवों के बुद्धि के जो है वो परे है। और इस प्रकार से महाप्रभु अभी वृंदावन में जा रहे हैं, वहां पे अलग अलग दृश्यों को, अलग अलग तीर्थ स्थलों को भेंट दे रहे हैं। हम अध्याय प्रारंभ करते हैं, अध्याय 18वां, जिसका शीर्षक है महाप्रभु का वृंदावन भ्रमण। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। इस प्रकार से नाचते 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 महाप्रभु, एमत महाप्रभु नाचिते नाचिते, आरिट ग्रामे आसी बाह्य हैला आचंबिते। इस प्रकार से नाचते 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 महाप्रभु वृंदावन में जा रहे हैं और पहुंच जाते हैं आरिट ग्राम, एक जगह है आरिट ग्राम में महाप्रभु पहुंचे है, और अपनी वहां पर बाह्य चेतना में महाप्रभु आ जाते हैं और सारे लोगों से यहां वहां पूछते हैं, क्या आप जानते हैं राधा कुंड कहाँ है, क्या आप जानते हैं राधा कुंड कहाँ है, ढूंढते ढूंढते। उनके साथ अभी कौन है, आपको याद होगा पिछले अध्याय से, सनोड़िया ब्राह्मण अभी महाप्रभु के साथ ही जो है वो चल रहे हैं आगे आगे, उनको उनको लेके महाप्रभु जा रहे हैं। तो सनोड़िया ब्राह्मण को पता नहीं है राधा कुंड कहाँ है, न बलभद्र भट्टाचार्य उनके साथ जो सेवक है। तो अभी महाप्रभु के साथ 3 लोग है वृंदावन भ्रमण के लिए, तो तीनों को तो पता नहीं है, बाकी जो दूसरे लोग है जिनसे महाप्रभु पूछ रहे उन्हें भी किसी को भी पता नहीं है कि महाप्रभु जो है वो जो राधा कुंड को ढूंढ रहे हैं, वो राधा कुंड कोई जानता ही नहीं है। और इस प्रकार से एक अनाज का क्षेत्र था, 2 धान क्षेत्र, उनके बीच में थोड़ा जल समुदाय, थोड़ा सा जल था, वहां पर महाप्रभु अचानक प्रवेश कर जाते हैं और वहीं पर नहाने लगते हैं। और महाप्रभु वहां पर नहाते क्योंकि वो स्वयं कृष्ण और राधा रानी है तो वो जानते हैं कि राधा कुंड स्थली कौन सी होगी, क्योंकि वो राधा कुंड स्थान अभी तक लुप्त हो चुका था। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने उस स्थान को भी प्रकट कराया और वहां पर स्नान करते करते राधा कुंड की महिमा का महाप्रभु गान करते हैं और स्तुतियां अर्पण करते हैं। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सेवैका विष्णुर अत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार से सारे गोपियों में भगवान को श्रीमती राधारानी प्रिय है, उसी प्रकार से यथा राधा प्रिया विष्णु हो, जिस प्रकार से राधा रानी प्रिय है तस्याह कुंड प्रियम तथा, उसी प्रकार से उनका जो कुंड है राधा कुंड वो भी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार से राधा कुंड की महिमा का गान कराते हैं महाप्रभु और कहते हैं कि जितनी राधा रानी की मधुरिमा है उतनी ही मधुरता इस राधा कुंड के जल की है, जितनी महिमा श्रीमती राधा रानी की है उतनी ही महिमा इस कुंड की है, इसलिए जो भी कोई व्यक्ति इस कुंड में केवल एक बार भी स्नान कर लेता है उसका जन्म सफल हो जाता है। सही कुंडे यही एक बार करे स्नान, तारे राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान। जो व्यक्ति एक बार भी कोई इस कुंड में स्नान कर लेता है, कृष्ण श्रीमती राधा रानी जैसा प्रेम उस व्यक्ति में संचारित कर देते हैं। और इस प्रकार से महाप्रभु अपनी अपनी स्वयं की लीलाओं में मत, क्योंकि वो जानते थे कि राधा और कृष्ण के रूप में उन्होंने उसी तट पर जो है वो रासलीला रचाई थी और उसी राधा कुंड में उन्होंने जल क्रीड़ाएं खेली थी। तो उसका स्मरण करते हुए महाप्रभु जो है वो मदमत्त होते हैं और प्रेमावेश में नृत्य करते हैं। और वहीं पर जो राधा कुंड था उसी के मिट्टी का तिलक कर लेते हैं और बलभद्र भट्टाचार्य से कहते हैं कि थोड़ी मिट्टी अपने साथ भी ले चलो, और इस प्रकार से महाप्रभु ने उस मिट्टी का भी जो है वो आदर किया। आगे चलते चलते महाप्रभु सुमन सरोवर जाते हैं, वहां पर स्नान करते हैं और वहां से आगे महाप्रभु दूर से ही जो है वो गोवर्धन पर्वत देखते हैं और अभी निकट जा रहे महाप्रभु गोवर्धन के। गोवर्धन देखी प्रभु हईला दंडवत, एक शिला आलिंगिया होइला उन्मत्त। महाप्रभु ने दूर से ही गोवर्धन को दंडवत प्रणाम अर्पण किया और एक शिला को देख के महाप्रभु उस शिला को आलिंगन दिया और महाप्रभु एक गांव में प्रवेश करते हैं जिसका नाम है गोवर्धन गांव। तो गोवर्धन गांव में महाप्रभु हरिदेव मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहां पर महाप्रभु प्रेम आवेश में आके नृत्य करते हैं और वहां के जो पुजारी होते हैं वो महाप्रभु को हरिदेव जी का माला महाप्रसाद देते हैं और उनका यथोचित आदर सत्कार वहां पर करते हैं। उसके पश्चात महाप्रभु ब्रह्म कुंड में स्नान करने के लिए जाते हैं। जब तक महाप्रभु ब्रह्म कुंड में स्नान करते हैं उसी कुंड के तट पर बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के प्रसाद की कुछ व्यवस्था करते हैं और रात के समय महाप्रभु वहीं पर निवास करते हैं। जब महाप्रभु वहां पर रुके हुए हैं गोवर्धन गांव में के तट पर ब्रह्म कुंड के तट पर, महाप्रभु के मन में अचानक विचार आ जाता है कि मैं तो इस गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ नहीं सकता, तो यहां पर जो गोपाल जी है उनका मैं दर्शन कैसे कर पाऊंगा। तो महाप्रभु जैसा ही ऐसे सोचते हैं, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं और वो इस प्रकार से गोवर्धन को भगवान के शरीर से अभिन्न समझते हैं, ये भगवान का ही तनु है ऐसा मानते हैं और इसलिए आदरपूर्वक वो अपने पैर पर्वत पर कभी नहीं रखते और वही परंपरा अभी भी चलती आ रही है। तो महाप्रभु भी सोचे कि मैं तो चरण अपने नहीं रख पाऊंगा तो मैं कैसे गोपाल का दर्शन कर पाऊंगा। इस प्रकार से गोपाल एक योजना बनाते हैं कि चलो मैं जाके महाप्रभु को अपना दर्शन देता हूं। तो इस प्रकार से जो गोपाल जिस गांव में स्थित थे उसका नाम था अन्नकूट गांव। तो अन्नकूट गांव में अचानक एक ब्राह्मण आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुस्लिम यहाँ पे जो है वो कुछ लोग आक्रमण करने वाले हैं, तो हमें यहाँ से भागना होगा और हम गोपाल के विग्रह को सब लोग लेके भाग जाएंगे। तो इस प्रकार से सारा अन्नकूट गांव सारे लोग जो है वहां से भागना प्रारंभ कर लेते हैं। कोई लोग गोपाल के विग्रहों को लेके साथ में जा रहे हैं और सारा अन्नकूट गांव जो है वो सुना पड़ा रह जाता है और सारे लोग अभी गांठुली गांव एक है वहां पर स्थायी हो जाते हैं और गोपाल जी का विग्रह एक ब्राह्मण के घर में रखा जाता है और वहीं पर चोरी छुपे जो है वो वहां पर विग्रह की सेवा प्रारंभ कर देते हैं। ऐछे म्लेच्छ भय गोपाल भागे बारे बारे, मंदिर छाड़ी कुंजे रहे कीबा ग्राम अंतरे। इस प्रकार से मुस्लिम जो आतंकी लोग थे वहां पर उनके भय से बार बार गोपाल को इस प्रकार से अलग अलग जगह भागना पड़ता था, पुनः वापस आ जाते थे। कई बार कुंज में रहते थे, कई बार पेड़ों के अंदर रहते थे, कई बार किसी के घर में छुप कर रहते थे, ऐसा ये हमेशा होता रहता था। और इस प्रकार से हमने देखा जब माधवेंद्रपुरी मध्यलीला अध्याय कौन सा है, अध्याय 4, कि वहां पर गोपाल जी सपने में आते और माधवेंद्र कुपरी को भी कहते कि एक कुंज में मैं हूं, मुझे यहां से बाहर निकालो और मेरी स्थापना करो। तो इस प्रकार से जो गोपाल उनको कई बार अलग अलग जगह पर लिया जाता था इन मुस्लिमों के आक्रमण के भय से, तो अभी भी जो है वो उसी प्रकार से गोपाल एक जगह छिप गए गांठली गांव में। तो दूसरे दिन ब्रह्मकुंड से जब महाप्रभु उठ जाते हैं तो आगे चल के महाप्रभु मानस गंगा में स्नान करते हैं और गोवर्धन परिक्रमा प्रारंभ कर देते हैं। तो मानस गंगा में स्नान करके महाप्रभु ने गोवर्धन परिक्रमा प्रारंभ की। गोवर्धन देखी प्रभु प्रेमाविष्ट हां, नाचिते चलीला श्लोक पढ़िया। महाप्रभु ने जैसे ही गोवर्धन परिक्रमा प्रारंभ की, गोवर्धन को देख देख के महाप्रभु जो है वो नाचते जा रहे हैं और एक श्लोक का उच्चारण करते हुए महाप्रभु गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। कौन सा है वह श्लोक, हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूयवसकंदर कंदमूलैः। हमारे नासिक के भक्तों को इस श्लोक का अनुवाद बताने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण श्लोक सारा अनुवाद और सारा तात्पर्य सब भक्तों का मुखोद्गत होगा, क्योंकि इतनी बार ये श्लोक हम सब यहाँ पर रविवार के सत्रों में श्रीमान शिक्षाष्टकम प्रभु के मुखारविंद से जो है वो सुने हुए हैं। तो इस प्रकार से महाप्रभु गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए आगे आगे जाते हैं गोविंद कुंड में, वहां पर स्नान करते हैं। और जब गोविंद कुंड में महाप्रभु स्नान करते हैं, उन्हें वहां पर खबर मिलती है कि गोपाल जी अभी गांठुली ग्राम में आए हुए हैं और वहां पर महाप्रभु तुरंत दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। जब भी महाप्रभु जैसे ही गोपाल जी का दर्शन करते हैं, कल्पना कीजिए गोपाल स्वयं युक्ति बना के महाप्रभु को दर्शन देने के लिए वहां पर उपस्थित है। महाप्रभु जब देखते हैं दर्शन, प्रेमाविष्ट होकर वहां पर जो है वो नृत्य और कीर्तन प्रारंभ कर देते हैं। और इस प्रकार से 3 दिन तक महाप्रभु गांठुली गांव में गोपाल जी के सेवा में रत रहते हैं। 4th दिन गोपाल जी वहां से निकल लेते हैं और पुनः गोपाल जी अपने गांव चले जा रहे हैं अन्नकूट। और गोपाल जी क्योंकि वो स्वयं भगवान है तो वो पर्वत पर चढ़ सकते हैं, तो गोपाल जी पर्वत पर जाते हैं और महाप्रभु जो है वो नीचे ही रह जाते हैं। देखी थे उत्कंठा होय ना चढ़े गोवर्धने, कौन छले गोपाल आसी उतरे आपने। महाप्रभु को गोपाल जी को देखने की इतनी उत्कंठा तीव्र थी, लेकिन वो न चढ़े गोवर्धने, गोवर्धन पर चढ़ नहीं पा रहे थे, इसलिए कौन छले गोपाल आसी उतरे आपने। इसलिए छल पूर्वक ये युक्ति गोपाल जी ने स्वयं बनाई थी, पता नहीं वो कौन ब्राह्मण आया था, ऐसा कहा था मुस्लिमों का आक्रमण होने लगा, कुछ आक्रमण वगैरह नहीं हुआ था, तो एक छल पूर्वक हुआ था, एक कौन आया था वही पता नहीं चला। तो शायद भगवान की ही ये योजना थी, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु को दर्शन देना चाहते थे। और इस प्रकार से कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि ऐसे कई सारे भक्त आके गए, गोपाल जी ने स्वयं उन्हें दर्शन दिया। एक बार ऐसे ही भगवान के महान भक्त जैसे रूप गोस्वामी आदि जब वृंदावन में आए थे, तब गोपाल जी जो है वो मथुरा चले गए थे और विट्ठलेश्वर मंदिर में वहां पर रहे थे और 1 महीने तक वहां पर रहे थे। रूप गोस्वामी, उनके साथ जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, ये सारे भक्त वहां पर जो थे। और वो भी इस प्रकार से जो है वो मथुरा में जाके विट्ठलेश्वर मंदिर में उन्होंने गोपाल जी का दर्शन लिया था, क्योंकि वो गोवर्धन पर नहीं चढ़ पा रहे थे, इसलिए गोपाल ने ही कुछ योजना बनाई थी। और उस समय जो गोपाल जी फिर पुनः 1 महीने के बाद अपने निवास स्थान तक चले जाते हैं और रूप गोस्वामी आदि सादी भक्त जो है वो वृंदावन के लिए चल पड़ते हैं। तो इस प्रकार से चलते चलते महाप्रभु अभी काम्यवन जाते हैं, महाप्रभु उसके पश्चात नंदीश्वर जाते हैं और पावन सरोवर जैसे अन्य कई सारे सरोवरों में महाप्रभु स्नान करके आगे आगे जाते हैं। एक जगह गाँव में महाप्रभु लोगों से पूछते हैं कि क्या इस पर्वत के ऊपर कोई विग्रह का दर्शन है करने के लिए। वो लोग बताते हैं कि विग्रह तो है लेकिन वो किसी गुफा में छुपे हुए हैं, एक माता पिता और उनके शिशु ऐसे विग्रह है। तो जैसे ही महाप्रभु सुनते हैं वो तुरंत उस पर्वत चोटी के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां पर खुदाई करने के पश्चात उन्हें यशोदा मैया, नंद महाराज और उनके शिशु गोपाल कृष्ण, उनका दर्शन होता है। वहीं पर उनकी स्थापना करते हैं और वहां पर महाप्रभु जो है वो प्रेम से आलिंगन करते हैं कृष्ण को और वहां से जो है वो महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर निकल पड़ते हैं। और इस प्रकार से फिर महाप्रभु खादीरवन चले जाते हैं, फिर शेषशाही जहां पर लक्ष्मी जी के दर्शन करते हैं, फिर खेला तीर्थ वहां का दर्शन करते हैं जहां पर कृष्ण और बलराम अपने लीला के समय वहां पर खेला करते थे, वो खेला तीर्थ। उसके पश्चात महाप्रभु भंडीरवन, भद्रवन, श्रीवन, लोहवन, महावन, गोकुल महावन वहां पर जाते हैं और जहां पर नलकुवेर मणिग्रीव उन अर्जुन वृक्षों का भगवान कृष्ण ने, जब यशोदा माई ने भगवान कृष्ण को बांधा था और इन यमला अर्जुन वृक्षों का उद्धार किया था, उस स्थली को देख के महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और मथुरा पुनः महाप्रभु चले जाते हैं और सनोड़िया ब्राह्मण जो मथुरा का ही था वहां पर जो है वो महाप्रभु चले जाते हैं। लेकिन महाप्रभु का दर्शन करने के लिए इतने लोगों की भीड़ वहां पर होती है, इसलिए महाप्रभु अभी अपना मुकाम की जगह बदली कर देते हैं। अभी महाप्रभु सनोड़िया ब्राह्मण के घर से निकलकर महाप्रभु अक्रूर तीर्थ रहने के लिए चले जाते हैं। और कुछ दिन तक महाप्रभु अक्रूर तीर्थ में ही रहते हैं। दूसरे दिन फिर महाप्रभु वृंदावन पुनः चले जाते हैं दर्शन करने के लिए, कालिया रुद देखते हैं, प्रस्कंदन स्थली जाते हैं, वहां पर महाप्रभु स्नान करते हैं। उसके पश्चात रासस्थली चले जाते हैं। कल्पना कीजिए, वही महाप्रभु अभी रासस्थली में जा रहे हैं तो वहां पर प्रेम से जो है वो महाप्रभु वहां का आस्वादन करते हुए मूर्छित हो जाते हैं, पुनः कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करते वहां से जागृत अवस्था में आ जाते हैं और आगे की अपनी वृंदावन परिक्रमा, वहां पर केशी तीर्थ जाते हैं। केशी तीर्थ महाप्रभु संपूर्ण दिन बिताते हैं और पुनः शाम को महाप्रभु अक्रूर तीर्थ वापस चले आ जाते हैं। अगले दिन सुबह पुनः प्रातः काल में महाप्रभु स्नानादि के पश्चात वृंदावन जाते हैं, वहां पर चिरघाट चले जाते हैं और वहां से तेंतुली तला, वहां पर जो इमली का एक वृक्ष है जिसे इमली तला करके जो जगह है वहां पर चले जाते हैं। आज भी वह इमली तला जगह है जहां पर चैतन्य महाप्रभु का एक विग्रह बना के रखा गया है यमुना नदी के तट पर, चिरघाट से थोड़ा ही जो है वो आगे। उस जगह महाप्रभु बैठकर काफी समय तक, क्योंकि यमुना नदी का दर्शन वहां से होता था, यमुना की शीतल जल वहां से बहा करती थी, तो कीर्तन करने के लिए एक जो बहुत अच्छी जगह महाप्रभु को उपयुक्त लगी और वहां पर महाप्रभु दोपहर के समय तक बैठ के कीर्तन किया करते थे। उसी समय एक राजपूत जिसका नाम था कृष्णदास वो वहां पर आ जाते हैं और महाप्रभु को देख के दंडवत प्रणाम करते हैं और महाप्रभु उन्हें पूछते हैं कि अरे आप कौन हैं, कहां से आ रहे हैं? तो वो बताता है, मैं एक क्षत्रिय राजपूत, इसी नदी के उस पार मेरा घर है और रात को मैंने एक सपना देखा था और उस सपने को साकार करते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ। और जब उन्होंने महाप्रभु को देखा तो वो कहे कि यही तो मुझे सपने में आए थे, और अचंभित होकर उसने प्रणाम किया था। महाप्रभु उसे आलिंगन कर देते हैं और वो भी प्रेमाविष्ट होकर कृष्ण के कीर्तन में नृत्य करने लगता है और वो महाप्रभु को उसके पश्चात महाप्रभु के साथ जुड़ जाता है और अपना सारा घरदार संपत्ति परिवार सबको छोड़ के महाप्रभु के साथ अभी वो भी वृंदावन में परिक्रमा करना प्रारंभ कर देता है। तो पहले से अभी महाप्रभु के साथ सनोड़िया ब्राह्मण है बलभद्र भट्टाचार्य उनके सेवक, और एक जन जुड़ जाते हैं महाप्रभु के साथ परिक्रमा करने के लिए, वो है राजपूत कृष्णदास। तो एक दिन महाप्रभु अक्रूर तीर्थ पर बैठे हुए थे तो कई सारा कोलाहल वहां पर लोगों की भीड़ उन्होंने देखी और कई सारे लोग चर्चा कर रहे थे। वो सब लोग वहां पर आते हैं, महाप्रभु को प्रणाम करते हैं और महाप्रभु पता नहीं ये कौन सा कोलाहल चल रहा है, सारे लोग आजकल वहां पर चर्चा कर रहे थे, कृष्ण पुनः वृंदावन में प्रकट हो गए हैं, कृष्ण पुनः वृंदावन में प्रकट हो गए हैं, इस प्रकार की चर्चा वहां पर चल रही थी। वृंदावन पुनः कृष्ण प्रकट होइल, यहां तहां लोक सब कोहिते लागिल। इस प्रकार से सारे लोग बोल रहे थे कि वृंदावन में पुनः कृष्ण प्रकट हो गए, पुनः कृष्ण प्रकट हो गए। चैतन्य महाप्रभु सारे लोगों को पूछते हैं कि अरे आप सब लोग कहां से आ रहे हैं, क्या हो गया है, कहां पर कृष्ण प्रकट हो गए? लोक कहे कृष्ण प्रकट कालिया दोहेर ज्वले, कालिया शीर्य नृत्य करे फणा रत्न ज्वले। कि लोग क्या कहने लगे थे, कृष्ण प्रकट कालिया दोहेर ज्वले, कालिया दह में आज भी जो है वो कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए हैं और कैसे कालिया शीर्य नृत्य करे, कालिया के फणों के ऊपर कृष्ण गोपाल के रूप में नृत्य करते हैं और फणा रत्न ज्वले, और कालिया के फण के ऊपर कुछ रत्न जो है वो चमकते रहते हैं। और तीन दिन से ऐसा हो रहा है, महाप्रभु भी अचंभित हो जाते हैं और लोग कहते हैं, सब लोग, हमने कृष्ण को देखा है, हमने कृष्ण का दर्शन किया है। क्या आपने किया? हमने कृष्ण का दर्शन किया है। महाप्रभु कहते हैं सत्य है, सत्य है, कृष्ण का दर्शन आप लोगों ने किया है। कविराज गोस्वामी कहते हैं कि छल पूर्वक सरस्वती देवी उन लोगों के मुख से बुलवा रही थी कि उन्होंने कृष्ण का दर्शन किया है, जो स्वयं महाप्रभु वहां पर उपस्थित थे उनका उन्होंने वास्तव में दर्शन किया था, वही कृष्ण है। वो जो दूसरे कृष्ण थे वो तो छल छल कोई कोई जो है वो छल हो रहा था और भ्रम पूर्वक लोग उन्हें कृष्ण मान रहे थे। तो एक दिन बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के पास आके निवेदन करते हैं कि महाप्रभु मुझे भी वो कृष्ण का दर्शन करना है, कलयुग में आज कृष्ण प्रकट हो गए, कई कितने सालों के पश्चात मुझे भी दर्शन की अभिलाषा है। महाप्रभु प्रेम से छापड़ मार देते, यार बैठो यहाँ पे, चला है कृष्ण को देखने, कलयुग में कभी सुना है कृष्ण अवतरित होते हैं, बैठ इधर ही। बोलता है कृष्ण का दर्शन करने के लिए जाएगा, आज इधर ही रुक, कल चले जाना दर्शन करने के लिए कृष्ण का। तो उसी समय जो है वो कुछ लोग वहां पर जो है वो सुबह आ जाते हैं और महाप्रभु उनको पूछते हैं, क्या आपने कृष्ण को देखा है, कृष्ण को देखा है? सब लोग बोल रहे कृष्ण को देखे, सब लोग क्या आपने देखा है? वो लोग बोलते हैं तेरी क्या कृष्ण कृष्ण लगा के रहते हैं। एक्चुअली वास्तव में क्या है, एक मछुआरा है जो रात के समय वहां पर मछलियों को पकड़ने के लिए अपनी नाव में जाता है और एक दीपक जलाता है और वो दीपक जलाते अपने कई सारे मछलियों को पकड़ने का कार्य करता है। तो लोग भ्रमित है, वो लोग जो नाव है उसको समझ बैठे है कालिया, जो दीपक है उसको समझ बैठे है कि वो कालिया के फण के ऊपर जो है वो रत्न, और जो मछुआरा फिर इस प्रकार से हिलता डुलता है और वो जो जाल डालता है उस मछुआरे को समझ बैठे है कृष्ण, उन्हें लगता है नृत्य कर रहे हैं। फिर महाप्रभु कहते हैं कि देखो मैंने कहा था बलभद्र को, इस प्रकार से जो है वो कोई कृष्ण नहीं है, सब भ्रम है यहाँ पर। फिर बलभद्र भट्टाचार्य वो भी उनकी बुद्धि ठिकाने आ जाती है। लेकिन होता क्या है कि लोग कहते हैं कि लेकिन ये सच बात है कि वृंदावन में कृष्ण आए हुए हैं, वृंदावन में कृष्ण है, हम देख रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं अरे वो कृष्ण तो नहीं, मैंने अभी तो आपने कहा, अभी कौन से कृष्ण को आपने देखा है? फिर वो लोग कहते हैं, कहना लगते हैं, महाप्रभु की स्तुति का गान करते हैं कि आप जो सन्यासी है, आप चलते फिरते नारायण के रूप में यहां पर है और आप ही जो है वो कृष्ण के अवतार है। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी आचार्य भक्ति अपनी सिखाएमो, महाप्रभु इस दुनिया के सामने यह सिद्धांत प्रस्तुत करना चाहते हैं कि एक बद्ध जीव, एक साधारण जीव कभी भी जो है वो कृष्ण नहीं बन सकता। एक जीव जीव है और भगवान हमेशा भगवान ही रहेंगे। प्रभु कहे विष्णु विष्णु इहाना कोहिबा, जीव अधमे कृष्ण ज्ञान कबुना कोरिबा। ये जीव एक अधम, महाप्रभु कान को हाथ लगा के विष्णु विष्णु कहते हैं कि ये जीव एक साधारण जीव है और कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। एक जीव कभी ईश्वर नहीं बन सकता। कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है और एक जीव जो है वो उनका अंश के समान है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और जीव उनके सदैव अंशी रहेगा। जीव ईश्वर तत्व प्रभु नहे सम, ज्वलदाग्नि राशि यही छे स्फुल्लिंगेर कण। महाप्रभु उदाहरण देते हैं कि जीव जो है वो ईश्वर तत्व है, भगवान ईश्वर तत्व है, कृष्ण ईश्वर तत्व है, जीव कभी भी न सम उनके समान हो नहीं सकता। जिस प्रकार से जो अग्नि से बाहर आया हुआ स्फुल्लिंग वो कभी भी अग्नि की ज्वाला नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार से जीव को हम लोगों ने कृष्ण कभी नहीं कहना चाहिए। और जो कहता है ऐसा वो मूर्ख है और यमराज के दंडे उसे हमेशा पड़ते रहेंगे। लेकिन लोग कहते हैं कि हम लोग देख रहे हैं आप सामान्य जीव तो जरूर नहीं है। भगवान कृष्ण जो 5000 वर्ष पूर्व आए थे उसी प्रकार से आप अभी वही ईश्वर उन्हीं लक्षणों को प्रकट करते हुए हमारे सामने यहाँ पर अभी हमारे नजरों के सामने प्रकट हो रहे हैं। जो आपकी स्वर्ण कांति है उस स्वर्ण कांति ने आपकी श्याम कांति को ढक लिया है। मानो राधा रानी का ही भाव और द्युति को लेके आप जो है वो प्रकट हुए हैं। जिस प्रकार से कपड़े के वस्त्र में कितना भी ढक दिया तो भी कस्तूरी की सुगंध जो है वो ढकी नहीं जा सकती, उस प्रकार से आपके जो महाभागवत के लक्षण है वो जो है वो अभी ढके नहीं जा रहे हैं। कितने सारे लोगों को आपने कृष्ण प्रेम में मदमत्त बनाकर नाचने के लिए लगा दिया है, ऐसा जो है वो केवल भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए आप जो है वो भगवान ही है। और इस प्रकार से महाप्रभु की कई सारी स्तुतियां, कई सारे उनके जो लीलाएं हैं उनको वो लोग बखान करना प्रारंभ कर देते हैं। दर्शनेर कार्य आच्छुक ये तोमर नाम सुने से कृष्ण प्रेमे मत तारे त्रिभुवने। दर्शन की तो बात ही दूर है, जो केवल आपका नाम भी एक बार सुन लेता है वो व्यक्ति भगवान का बड़ा भक्त बन जाता है और कृष्ण प्रेमे मत तारे त्रिभुवने वो पूरे त्रिभुवन को तारने की शक्ति जो है वो रखता है अपने आप में, ऐसा आपका जो है वो नाम की महिमा है। तोमार नाम सुनी है स्वपच पावन, अलौकिक शक्ति तोमार नायाय कथन। इतनी अलौकिक शक्ति है केवल आपके नाम में। तुम्हारे नाम सुनी है स्वपच पावन, जो चांडाल व्यक्ति भी है वो भी अपने आप को पवित्र कर सकता है यदि केवल एक बार भी कोई आपका नाम केवल सुनता है। गौरांगा तो इस प्रकार से जो है वो कोई नाम लेता है तो त्रिभुवन को पार करने की, त्रिभुवन को तारने की शक्ति उसमें आ जाती है, और कोई आपका नाम सुनता है केवल तो भी वह व्यक्ति जो है वो चांडाल भी क्यों न हो वो भी अपने कुल को पवित्र बन सकता है, करा सकता है। एत महिमा तुमार तटस्थ लक्षण स्वरूप लक्षण है तुम्हें व्रजेंद्र नंदन। ये सारे जो लक्षण हम लोग वर्णन कर रहे हैं ये तो केवल तटस्थ लक्षण है, ये दुय्यम लक्षण है। प्रथम लक्षण, मूल लक्षण तो ये है कि आप व्रजेंद्र नंदन वही है। तो इस प्रकार से महाप्रभु उन सारे लोगों के ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं और सारे लोग कृष्ण प्रेम में मदमत्त होकर अपने घर जो है वो पुनः चले जाते हैं। उस अक्रूर तीर्थ में महाप्रभु काफी समय तक जो है वो रुके थे, और जब रुके थे महाप्रभु अक्रूर तीर्थ में, महाप्रभु की महिमा इस प्रकार अलग अलग लोगों तक पहुंच गई थी, सारे लोग महाप्रभु को प्रसाद के लिए आमंत्रित किया करते थे, और एक एक दिन में लगभग 10-10, 20-20 आमंत्रण आया करते थे। कल्पना कीजिए इतने सारे आमंत्रण तो कैसे स्वीकार करें। बलभद्र भट्टाचार्य वो स्वयं परेशान हो जाते थे अभी क्या करें। तो इस प्रकार से जो है वो इतना कोलाहल वहां पे होता था। एक दिन अक्रूर घाट में महाप्रभु बैठे थे, और जैसे महाप्रभु अक्रूर घाट पर बैठे थे वो सोचते हैं कि यही वो जगह है जहां पर जो है वो अक्रूर जी को वैकुंठ का दर्शन हुआ था, यही वो जगह है जहां पर व्रजवासियों ने गोलोक वृंदावन का दर्शन किया था, और ऐसा महाप्रभु सोच ही रहे थे कि यमुना के जल में प्रवेश कर लेते हैं। और जैसे ही महाप्रभु यमुना के जल में प्रवेश कर लेते डूबते हुए दिखाई देते हैं, जो कृष्णदास जो था राजपूत वो जोर से चिल्लाता है महाप्रभु गिर गए, और जैसे वो चिल्लाते बलभद्र भट्टाचार्य वहां पर आ जाते हैं, और बलभद्र भट्टाचार्य नदी में प्रवेश करके महाप्रभु को वहां से बाहर निकाल लेते हैं, और महाप्रभु सचेत हो जाते हैं। तो जब ये लीला हुई तो बलभद्र भट्टाचार्य वो सनोडिया ब्राह्मण के पास जाके अभी विचार विमर्श करना प्रारंभ कर देता है कि अभी कुछ करना होगा। देखो ऐसे महाप्रभु अभी गए अक्रूर घाट में, नदी में जो है वो डूबने ही वाले थे, भगवान की कृपा से बच गए, मुझे सहायता करने के लिए जाना पड़ा। तो ऐसे महाप्रभु अभी कहाँ कहाँ डूबेंगे तो पता नहीं, कौन बचाएगा, तो महाप्रभु की जान को खतरा हो सकता है। दूसरी बात है इतने सारे लोग आमंत्रण करने के लिए आते, मैं परेशान हो जाता हूँ किसका आमंत्रण स्वीकार करूं किसका नहीं करूं। तो ये जो है वो ये स्थल महाप्रभु के जो है वो ये स्थिति अच्छी नहीं है, हमें महाप्रभु को वृंदावन से दूर लेके जाना होगा। तो वो जो सनोडिया ब्राह्मण थे वो कुछ अपना सुझाव देते हैं, वो कहते हैं कि चलो आप जाके महाप्रभु को बताओ कि हम लोग चलेंगे प्रयाग, और क्योंकि अभी जो है वो माघ मेला भी आ रहा है, मकर संक्रांति के दिन वहां पर हम लोग स्नान करेंगे और गंगा के तट से होते 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 हम लोग प्रयाग तक पहुंच जाएंगे, और आप जो हृदय में आपको ये जो भय लग रहा है, लोग बुला रहे हैं, वो भय आप महाप्रभु के सामने जाके प्रकट क्यों नहीं कर देते, जाओ महाप्रभु को बता दो ऐसे ऐसी बात है। तो फिर बलभद्र भट्टाचार्य सहमे हुए, महाप्रभु के सामने जाते हैं और महाप्रभु को वो कहते हैं कि देखिए महाप्रभु, ये जो इतने सारे लोग आते हैं ना आपको आमंत्रण करने के लिए, वो जो है वो समस्या का कारण है। सहिते ना पारी आमी लोकेर गड़बड़ी, निमंत्रण लागी लोक करे हुड़ा हुड़ी। सही तेना पारी, मैं सहन नहीं कर रहा हूं, क्या नहीं सहन कर रहा हूं, लोकेर गड़बड़ी, इतनी गड़बड़ी लोग करते हैं, किसके लिए गड़बड़ी हो रही है, निमंत्रण लागी लोग करे हुड़ा हुड़ी, हुड़ा हुड़ी का अर्थ है स्पर्धा, लोगों के अंदर स्पर्धा हो रही है, इतना कोलाहल हो जाता है आपको आमंत्रित करने के लिए, और जब सुबह आ जाते हैं तो लोग आपको नहीं देखते तो मुझे ही आमंत्रण के लिए जो है वो दे अप्रोच मी, वो मेरे पास ही आ जाते हैं आमंत्रण करने के लिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रातः काले आई से लोक तुम्हारे ना पाए, तुम्हारे ना पा लोक मोरा माथा खाए। प्रातः काले सुबह के समय लोग आते हैं, तुम्हारे ना पाए, आपको नहीं देखते तो लोग मेरा माथा जो है मेरा मोरा माथा खाए, मेरा माथा खाना प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए बहुत बड़ी समस्या है। तो हम जो है वो यहां से चले जाएंगे और गंगा नदी के तट से जाते जाते हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, प्रयाग पहुंच जाएंगे, और मकर संक्रांति का समय आने वाला है। आपको पता है महाप्रभु जब शरद काल में आए थे, शरद काल का अर्थ होता है लगभग कार्तिक के पश्चात, मतलब अक्टूबर नवंबर, अब तो अभी इतना समय बीत गया, अभी कुछ समय पश्चात जनवरी फरवरी में ये माघ मेला लगता है, संक्रांति, तो वहां पर हम लोग चले जाएंगे, मकर संक्रांति का स्नान करेंगे। हालांकि महाप्रभु की वृंदावन से निकलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी भक्त की इच्छा पूरे करने के लिए महाप्रभु कहते हैं कि आप जैसा ठीक समझो वैसा हम लोग करेंगे। आपने मुझे वृंदावन दिखाया, आप मुझे वृंदावन लेके आए, मैं आपका बहुत ऋणी हूं, आपका ऋण मैं कभी भी नहीं चुकता कर सकता, इसलिए आप जो कहेंगे वो मैं करने के लिए सदैव तैयार हूं। आप जैसा करेंगे सोचेंगे वैसा ही मैं भी चाहूंगा। फिर दूसरे दिन अभी महाप्रभु निकल पड़ते हैं गंगा नदी के किनारे किनारे से जो है वो जा रहे हैं। कौन कौन जा रहा है? चैतन्य महाप्रभु, बलभद्र भट्टाचार्य, बलभद्र भट्टाचार्य का सेवक कृष्णदास राजपूत और सनोड़िया ब्राह्मण, अभी उनके साथ साथ सब लोग जो है वो अभी निकल पड़े हैं प्रयाग की दिशा में। रास्ते में जाते 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 महाप्रभु को लगा ये लोग अभी थोड़े थक गए हैं, तो इसलिए महाप्रभु एक वृक्ष के तल के नीचे बैठ जाते हैं और सारे भक्त वहां पर थोड़ा विश्राम फरमाते हैं। अचानक महाप्रभु देखते हैं कुछ गैया वहां पर जो है वो भ्रमण कर रही है। गैयों को देख के महाप्रभु को वृंदावन का स्मरण होता है, महाप्रभु का मन प्रफुल्लित हो जाता है और वहीं पर एक ग्वाला बांसुरी बजाता है। तो जैसी बांसुरी की ध्वनि महाप्रभु के कर्ण पटलों पर आती है, महाप्रभु वहां पर उन्मत्त हो जाते हैं और प्रेमाविष्ट होकर वहीं पर मूर्छित हो जाते हैं। महाप्रभु मूर्छित हुए हैं, महाप्रभु के शरीर को पसीना आ रहा है, महाप्रभु के मुंह से फेन बाहर आ रहा है और महाप्रभु की सांस वहां पर लगभग रुक गई है। महाप्रभु की सांस रुकी हुई है और अचानक वहां पर तिगड़ुक 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 करके 10 घोड़े आ जाते हैं और मुस्लिम पठान जो है वो वहां पर आ जाते हैं। जो 10 मुस्लिम पठान सैनिक घोड़ों पर आते हैं और वहां पर देखते हैं एक सन्यासी बेहोश होके गिरा है और उसके इर्द गिर्द ये 4 लोग बैठे हुए हैं, वो जो है वो वहां पर बातचीत करना प्रारंभ कर देते हैं और कहते हैं कि ये जो 4 लोग हैं शायद इस सन्यासी के पास, देखो कितना कितना चमकीला सन्यासी है, शायद इस सन्यासी के पास बहुत सारा सोना था, इन लोगों ने इस सन्यासी को शायद लूट लिया है और कुछ धतुरा उसको उनको सूंघा के उसको पिला के उन्होंने इसे लगभग जो है वो बेहोश कर दिया है, चलो बंदी बना लेते हैं और ये 4 लोगों को जो है वो बंदी बना देते हैं। तो अभी 4 लोग हमें पता है कौन है, तो उसमें से जो 2 लोग थे जो बंगाल से आए थे वो थोड़ा डर जाते हैं। कौन है? बलभद्र भट्टाचार्य और उनके सेवक, ये अभी सहमे हुए क्योंकि एक तो अलग प्रांत में है, दूसरे की जगह में है और भाषा भी नहीं जानते हैं वहां की, तो वो लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन ये 2 लोग क्योंकि उसी प्रांत के हैं, राजपूत, ये तो राजपूत मतलब क्षत्रिय घराने के हैं, कृष्णदास सब कुछ छोड़ के आए हुए हैं, बिल्कुल निडर है अभी, और उनके साथ साथ दूसरे सनोड़िया ब्राह्मण वो भी निडर है, और ये सनोड़िया ब्राह्मण बात करने लगते हैं और इन पठान सैनिकों से कहते हैं जो मुस्लिम सैनिक है, चलो आपके राजा के पास लेके चलो, हमें बिल्कुल डर नहीं है। अरे मेरे 100 मित्र राजा की यहां पर चाकरी करते, मैं 100 बड़े बड़े लोगों को जानता हूं, आपको दिखा दूंगा, चलो वहां पर हमें लेके, हमको बंदी बना के रखे हो, और ये जो है ना सन्यासी, ये हमारे गुरु है, गुरु ये कुछ उनको धूप लग गई शायद मूर्छित हो गए हैं, और कैसा कभी कभी हो जाता है, ये मूर्छित हो जाते हैं, उड़ जाते हैं कुछ समय के पश्चात, थोड़ा समय रुको, इनको जब चेतना आ जाएगी वापस आप इनसे ही पूछ लेना जो भी है कुछ सत्य। लेकिन वो लोग कहते हैं, सारे सैनिक कहते हैं, आप धूर्त हो, आपने इनके धन संपत्ति को लूट लिया है, आपने इनको बेहोश करा दिया है, आपका इरादा है शायद इनको मारने का। उसी समय अभी जो राजपूत था उनका खून खोल उठता है, वो राजपूत कृष्णदास वो चिल्लाने लगते उनकी तरफ देख के, ए सैनिको आप जानते नहीं हम लोग कौन है, मैं यहीं का निवासी हूं, यहीं पे रहता हूं, यदि एक सीटी बजाऊंगा और पुकारूंगा ना तो 200 तुर्की सैनिक और 100 तोफाएं लेके सारे लोग यहां पर पहुंच जाएंगे और आपको नस्त ध्वस्त कर देंगे। तो वो जो पठान लोग थे उनकी भाषा में इन्होंने बोला, तो वो लोग थोड़ा अभी सहम गए। तो जैसे ही वो लोग सहम के डर रहे थे, उसी समय महाप्रभु सचेत अवस्था प्राप्त कर लेते हैं। तो महाप्रभु अभी कृष्ण कृष्ण हरी हरी ऐसा नाम लेके वहां पर चिल्ला उठते हैं और खड़े हो जाते हैं। तो जैसे ही ये लोग अभी देखते हैं तो पहले से ही कृष्णदास राजपूत की धमकी से वो लोग सहमे गए थे और अभी महाप्रभु सचेत हो गए तो इन्होंने चारों को मुक्त कर दिया। फॉर्चुनेटली महाप्रभु ने नहीं देखा कि इनको बंदी किया हुआ था, नहीं तो महाप्रभु तो उनको कुछ कर देते। तो वो लोग जो अभी भी महाप्रभु को देखे, महाप्रभु के पास आके उनको गिर पड़ते हैं कि हे सन्यासी महाशय, ये चार धूर्त लोग हैं और इन्होंने शायद आपको पागल बना दिया था, आपको लूटने के लिए तुले हुए हैं, आप संभालो अपने आप को। महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे न ठकन है मोर संगी जन, भिक्षु का सन्यासी मोर नाही किछु धन। अरे ये तो मेरे संगी है, चार लोग साथ में चल रहे हैं, मैं तो सन्यासी हूं भिक्षुक हूं, आप कह रहे धन लूट लिया, अरे मेरे पास धन भी कुछ नहीं है, मेरे पास तो केवल एक ही धन है, वो कृष्ण नाम का धन मेरे पास है, और मुझे जो है वो मुर्गी एक बीमारी हुई है जिसके चलते मैं ऐसा बीच बीच में बेहोश पड़ जाता हूं, ये लोग मुझे उठा लेते हैं। आपको याद है ये मुर्गी बीमारी हमने कहां पर और देखी थी, याद आ रहा है आपको? किसने बताया था? जब मध्य लीला का 15वां अध्याय जहां पर महाप्रभु सारे भक्तों का गुणगान कर रहे थे, उसमें महाप्रभु मुकुंद दास इनका भी गुणगान कर रहे थे जो खंडवासी है, मुकुंद रघुनंदन और नरहरी। तो मुकुंद का जब गुणगान कर रहे थे, महाप्रभु कह रहे थे, बता रहे थे कि ये बाहर से तो राजवैद्य का काम करता है लेकिन अंदर में कृष्ण भावना कूट कूट के भरी है। और जब महाप्रभु बताते कि एक बार की बात है जब वो राजा के साथ चर्चा कर रहे थे तो वो कुछ मोरपंख देख लेते और मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, और जब राजा उन्हें पूछता है कि आप कैसे गिरे, तब मुकुंद वही बताता है कि मुझे मुर्गी ये बीमारी है इसलिए मैं बीच बीच में ऐसा गिर पड़ता हूं। तो अभी महाप्रभु वही इन लोगों को बताते हैं कि मुझे भी जो है वो ये मुर्गी बीमारी है और बीच बीच में ऐसा मैं गिर पड़ जाता हूं और ये लोग जो है वो मुझे संभाल रहे हैं। और वो जो लोग थे सैनिक, वो फिर महाप्रभु को शरणागत हो जाते हैं। उसमें से एक व्यक्ति था जो थोड़ा गंभीर था और काले कपड़े उसने पहने हुए थे, सब लोग उसे पीर पंडित जानते थे, मानते थे। वो फिर महाप्रभु के सामने आ जाता है और वो कहता है कि कई सारे कुतर्क बोलता है कुरान से, और वो कहता है कि कुरान में इस प्रकार से निर्विशेष ब्राह्मण की प्रतिष्ठा है, और महाप्रभु उनके सारे मतों का खंडन कर देते हैं और कुरान के ही आधार पर, और कई सारे वो अलग अलग मत प्रस्तुत करता है, महाप्रभु उन सारे मतों का खंडन कर देते हैं। और महाप्रभु कहते हैं कि कुरान में निर्विशेष ब्रह्म इसका तो वर्णन है ही, लेकिन निष्कर्ष रूप में यदि हम लोग देखें तो जो कुरान भी जो है वो सविशेष ब्रह्म, सविशेष मतलब भगवान जो है वो गुण वाले है, शरीर वाले है, इनकी ही स्थापना करते है। तुम्हारा शास्त्र कहे शेषे एक ईश्वर सर्वैश्वर्य पूर्णते हो श्याम कलेवर। महाप्रभु तुम्हारा ही शास्त्र कहता है, कुरान क्या कहता है, कंक्लूजन निष्कर्ष शेषे में क्या कहता है, निष्कर्ष रूप में एक ही ईश्वर है। कौन है वो ईश्वर? सर्वैश्वर्य पूर्णते हो श्याम कलेवर, वो सर्वैश्वर्य से पूर्ण है और उनका शरीर का वर्ण है श्याम वर्ण के वो है। और इस प्रकार से महाप्रभु अभी उनको सारे पुराणों से निष्कर्ष निकालकर भगवान की भगवत्ता स्थापित करते हैं। मध्य लीला का 18वां अध्याय श्लोक संख्या 191 से लेके 191 से लेके हम लोग अभी आगे चर्चा कर रहे हैं, और महाप्रभु उन पठानों के साथ, मुस्लिम पठानों के साथ और खास करके इस पीर के साथ वार्ता कर रहे हैं। सच्चिदानंद देह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप सर्वात्मा सर्वज्ञ नित्य सर्वादि स्वरूप। ये भगवान का देह जो है वो साधारण देह नहीं होता है, सच्चिदानंद पूर्ण देह होता है और ये पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, ये सर्वात्मा है मतलब सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं, और नित्य सर्वादि स्वरूप ये सबके उद्गम स्थान भी है। सृष्टि स्थिति प्रलय तहा होते होय स्थूल सूक्ष्म जगते रहते हो समाश्रय। वही संपूर्ण सृष्टि, उसको बनाए रखना और उसका प्रलय करना इनके कारण है, सारे कारणों के कारण है। स्थूल सूक्ष्म जगते रहते हो समाश्रय, स्थूल और सूक्ष्म इन सारी सृष्टि के ये आश्रय स्थान है। सर्वश्रेष्ठ सर्व आराध्य कारणेर कारण तार भक्ते होय जीवेर संसार तारण। ये कौन है? ये सर्व कारणों के कारण है, सभी के द्वारा पूजनीय सर्व आराध्य है, सबसे श्रेष्ठ है। और तार भक्त होय संसार जीवेर जीवेर संसार तारण, कोई जीव उनका यदि भक्ति करता है तो वो इस संसार से उसका तारण हो सकता है, इसलिए उनकी सेवा सर्वश्रेष्ठ है। तार सेवा विना जीवेर नायाय संसार, ताहर चरणे प्रीति पुरुषार्थ सार। उनकी सेवा के बिना इस संसार को तारने का कोई उपाय नहीं है, और उनके चरणों के प्रति प्रीति जो है वही सारे पुरुषार्थों का सार है, पुरुषार्थ शिरोमणि। और यदि कोई व्यक्ति को उस प्रीति का अनुभव हो जाता है तो मोक्ष भी उसके आगे तुच्छ लगने लगता है। मोक्षादि आनंद यार नहे एक कण, पूर्ण आनंद प्राप्ति तार चरण सेवन। उनके चरणों की सेवा में ऐसा पूर्ण आनंद प्राप्त हो जाता है मानो आनंद का समुद्र मिल जाता है, उसके आगे मोक्ष जो है वो उस समुद्र के सामने एक बूंद भी नहीं रह पाता। कर्म ज्ञान योग आछे करिया स्थापन, आपके कुरान में कर्म ज्ञान और योग इन सब की स्थापना की गई है। सब खंड स्थापे ईश्वर ताहर सेवन, लेकिन आगे चल के इन सब का खंडन किया गया है और ईश्वर और उनकी सेवा इसका भी जो है वो कुरान में स्थापन किया गया है। तुमर पंडित सबार नाही शास्त्र ज्ञान, पूर्व अपार विधि मध्य पर बलवान। आपके कई सारे जो पंडित लोग है मौलवी, उन लोगों को शास्त्रों का ठीक से ज्ञान नहीं है। पूर्व अपार विधि में जो है वो पूर्व पक्ष होता है और एक होता है पर पक्ष। पूर्व पक्ष मतलब सारा अब तक जो दिया गया है वो ज्ञान, और पर मतलब निष्कर्ष में जो दिया गया है ज्ञान। जैसा भगवद गीता में भी कई लोग कहते हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ है, ज्ञान योग श्रेष्ठ है, अष्टांग योग श्रेष्ठ है, उनकी स्थापना की गई है। दूसरे अध्याय में सांख्य योग की प्रतिष्ठा है, छठे अध्याय में ध्यान योग की प्रतिष्ठा है, कई चौथे अध्याय में ज्ञान योग की प्रतिष्ठा है, पांचवे में ज्ञान योग की प्रतिष्ठा है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रतिष्ठा है, लेकिन निष्कर्ष में यदि देखा जाए तो 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो बाकी सब जो है वो पूर्व है, और जो आखिरी है उसे कहते हैं पर पक्ष। तो इस प्रकार से महाप्रभु कहते हैं कि कुरान में जो है वो पूर्व और पर। तो आपके जो लोग हैं मौलवी उन्हें पूर्व पक्ष का ज्ञान है, लेकिन पर वो नहीं जानते हैं, निष्कर्ष उन्हें जो है वो पता नहीं है। निज शास्त्र देखी तुम्हें विचार करिया की लिखिया छे शेषे कह निर्णय करिया। अपने कुरान को आप ही खुद जो है वो देखो पढ़ो, और जो कुछ लिखा है उस पर विचार करने के बाद ही तुम निर्णय कर सकते हो कि क्या लिखा है। अभी वो म्लेच्छ जो था वो मुस्लिम पीर वो कहता है म्लेच्छ कहे यही कही से ही सत्य होए, शास्त्र लिखी आचे कह लहते ना पारे। वो कहते कि आपने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है, कुरान में लिखा है, किंतु जो हमारे विद्वान है वो शायद समझते भी होंगे लेकिन वो इसका स्वीकार नहीं करते हैं। और वही जो ईश्वर का वर्णन कुरान में है वही आज मैं आपके रूप में मेरे सामने देख पा रहा हूँ। सहित गोसाई तुम्हें साक्षात ईश्वर, मोर कृपा कर मुई अयोग्य पामर। आप वही ईश्वर है, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मोर कृपा कर मुई अयोग्य पामर, मैं एक अयोग्य व्यक्ति हूँ और आप मेरे ऊपर जो है वो कृपया आपकी कृपा का वर्षा करे। अनेक देखिन मुई म्लेच्छ शास्त्र होइते साध्य साधन वस्तु नारी निर्धारिते। मुसलमान शास्त्र का विस्तार से मैंने अभी तक अध्ययन किया है, किंतु साध्य और साधन, साध्य मतलब हमने देखा था कि जो सर्वश्रेष्ठ साध्य वस्तु है उसे कहते हैं साध्य, और साधन उसका नाम है जो उस साध्य को प्राप्ति के लिए किया गया उपाय। तो साध्य और साधन का विचार मैंने ठीक से इन शास्त्रों में नहीं पढ़ा है, इतना पढ़ा है। लेकिन तुमा देखी जीवा मोर बोले कृष्ण नाम, आमी बड़ा ज्ञानी एई गेला अभिमान। आपको केवल देख के ही मेरी जीवा अभी कृष्ण नाम का उच्चारण कर रही है, और जो मेरा अभिमान था कि मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, ये मेरा अभिमान अभी चूर्ण चूर्ण हो गया है और मेरी जीवा कृष्ण नाम उच्चारण कर रही है। कृपा करी बल मोरे साध्य साधने एत बलि पड़े महाप्रभुर चरणे। महाप्रभु के चरणों में वो पीर गिर पड़ते हैं और वो कहते हैं कि साध्य और साधन क्या बात है, यह कृपया मुझे आप समझाइए। प्रभु कहे उठ कृष्ण नाम तुम्ही लैला, कोटि जन्मेर पाप गेला पवित्र होइला। अरे उठ, कृष्ण का नाम आपने उच्चारण किया है, आपके कोटि जन्मों के पाप अभी जो है वो धुल गए हैं और आप पवित्र हो गए हैं। यह है भगवान कृष्ण के नाम की महिमा। एक बार भी कोई व्यक्ति यदि भगवान कृष्ण का नाम का उच्चारण कर लेता है वह व्यक्ति जो है वो पवित्र बन जाता है। कृष्ण कह कैला उपदेश, सबे कृष्ण कहे सवार होइला प्रेमा वेश। महाप्रभु उन सब मुसलमानों की तरफ देखते हुए कहे कि कृष्ण को कहो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का कीर्तन करो, और वो सब जब कृष्ण का कीर्तन करने लगे वो सब प्रेमाविष्ट होके नृत्य करने लगे। और महाप्रभु ने वहीं पर उन लोगों की दीक्षा भी करा दी। रामदास बलि प्रभु तार कैल नाम, अर एक पठान तार नाम व्यंजुली खान। महाप्रभु ने ये जो पीर था उसे दीक्षा भी दिला दी और उसका नाम दे दिया रामदास। देखिए वो कहां म्लेच्छ जाति का वो व्यक्ति था, महाप्रभु ने उसका नाम दे दिया रामदास। और दूसरा एक विप्र था, दूसरा जो पठान था जो सबके साथ उनका नेतृत्व कर रहा था उसे भी महाप्रभु ने दीक्षा प्रदान की, उसका नाम रख दिया गया विजुली खान। और इस प्रकार से जो है वो जो विजुली खान था वो कौन था, अल्प वयस तार राजा रा कुमार रामदास आदि पाठन चाकर तहार। वो राजा का पुत्र था, जो नवाब उस समय वहां का था उसका वो पुत्र था, राजा का पुत्र था, और जो रामदास और बाकी सब लोग थे वो सब उसके सेवक थे। और इस प्रकार से जो है महाप्रभु उन सारे लोगों के चरण माथे के ऊपर अपने चरण रखते हैं और सबको कृपा प्रदान करते हैं, और वो सारे लोग तब से पठान वैष्णव करके जाने जाने लगे। जैसे हमारे आर्मी में भी होता है ना, एक आर्मी बटालियन, मराठा बटालियन, पठान बटालियन, ऐसे अलग अलग बटालियन होते हैं, तो उसी प्रकार से महाप्रभु की बटालियन में ये लोग पठान वैष्णव बटालियन होते हैं ना अलग अलग। जैसे यहाँ पर वर्णन आता है एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण मिला था, तो ऐसे ब्राह्मणों को भी अलग अलग नाम से जो उनके गुट होते हैं, तो इसी प्रकार से यहां से आगे चल के वो पठान वैष्णव बने और जगह जगह वो लोग भ्रमण करते 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 महाप्रभु की ख्याति उन्होंने जो है फैलाई और प्रचार किया। तो इस प्रकार से महाप्रभु अभी आगे आगे चलते चलते महाप्रभु पहुंच जाते हैं सोरो क्षेत्र। इस जगह इस सोरो क्षेत्र में महाप्रभु स्नान आदि करने के पश्चात इन दो लोग जो मथुरा से ज्वाइन किए थे महाप्रभु को, सनोडिया ब्राह्मण और कृष्णदास जो इमली तला में मिले थे राजपूत कृष्णदास, महाप्रभु कहते हैं कि आप अभी चले जाइए, हम लोग आगे जाएंगे प्रयाग की तरफ। लेकिन ये लोग दो लोग कहते हैं कि देखिए महाप्रभु, ये जो बलभद्र भट्टाचार्य और जो सेवक है उनका, ये बंगाली है, इनको यहाँ की भाषा आती नहीं है, और हमने देखा वो जो पठान आए थे तो कैसे ये लोग डर गए थे, तो हमें जो है यहाँ की अच्छे से जानकारी है, सब कुछ रास्ता वगैरह हम लोग अच्छे से जानते हैं। और राजपूत कहता है मैं तो राजपूत हूँ, कैसी कुछ विकट आपत्ति आती है तो मेरी मदद आपको लगेगी। तो इस प्रकार से वो फिर महाप्रभु के साथ ही चलना प्रारंभ कर देते हैं और गंगा के किनारे 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 से होके महाप्रभु अभी प्रयाग जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें जो भी कोई व्यक्ति देख लेते मिल लेते, केवल महाप्रभु का दर्शन करके ही वह व्यक्ति वैष्णव हो जाता, और जब वैष्णव बन जाता तो वो व्यक्ति अपने गांव में चला जाता, उसको देख के ही केवल लोग वैष्णव हो रहे थे। आजकल हम लोग देख रहे हैं ना कोरोना वायरस कैसा फैलता है, तो वो नाक से और कैसे कहां कहां से प्रवेश कर सकता है और फिर बाधित कर सकता है। एक व्यक्ति को यदि कोरोना बाधित है तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जाती है, उसे दूर रहो कहा जाता है, 6 फीट 1 मीटर के लिए दूर रहने के लिए कहा जाता है। तो हम भी सभी से निवेदन करते हैं कि आप भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अपने अपने घरों में ही बैठे रहे और चैतन्य चरितमृत का अध्ययन करते रहे, ये आपसे विनती है। तो क्यों, क्योंकि फिर ऐसा फिर आप सांस भी लेंगे तो फिर वो सांस से चला जाएगा और फिर कोरोना वायरस से आप बाधित हो जाएंगे और समस्या आ जाएगी, आज ही मैं पढ़ रहा था जीबीसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कमिटी, उन्होंने कई सारे भेजे हैं आर्टिकल्स, उसमें एक आर्टिकल उन्होंने भेजा था कि किस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भी एक बार एयरपोर्ट पे आए थे, उनके पास कुछ येलो कार्ड पूछा गया था, तो येलो कार्ड प्रभुपाद जी के पास नहीं था, तो श्याम सुंदर प्रभुपाद के सेवक उस समय थे, उनके पास भी नहीं था, तो श्याम सुंदर ने बहुत विनती की कि हमें जाने दीजिए, लेकिन उस समय भी जो है वो कार्ड नहीं था उनके पास। वो कहे कि इंदिरा गांधी पंतप्रधान भी आएगी, उनके पास ये कार्ड नहीं होगा, तो उन्हें भी हम लोग नहीं जाने देंगे। उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया था, 10 दिन के लिए, और क्वारंटाइन श्रील प्रभुपाद जी थे, और प्रभुपाद जी और उनके श्याम सुंदर उनके जो वार्तालाप है वो आगे चल के एक किताब के रूप में जो है वो प्रस्तुत की गई। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी भी क्वारंटाइन पीरियड में रहे थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण भावना को ही उन्होंने प्रचार के तौर में अपनाया था। तो इस प्रकार से जो है वो कोरोना वायरस जैसे बढ़ रहा है, तो उसी प्रकार से उस समय, अभी तो कोरोना पेशेंट को हम लोग देख के बाधित नहीं हो जाएंगे, लेकिन उस समय महाप्रभु की करुणा इस प्रकार से फैल रही थी कि एक वैष्णव गांव में चला जाता था तो उसे देख के ही कई सारे लोग वैष्णव बन जाते थे। इस प्रकार से गांव के गांव भक्त बनते जा रहे थे और वैष्णव बनते जा रहे थे। कविराज गोस्वामी कहते हैं जिस प्रकार से दक्षिण भारत में महाप्रभु लोगों को वैष्णव बनाए, इसी प्रकार से महाप्रभु अभी जो मथुरा मंडल, ये सारा जो क्षेत्र है वहां पर वृंदावन गमन में महाप्रभु ने सब लोगों को वैष्णव जो है वो बनाया। इस प्रकार से महाप्रभु अभी प्रयाग में पहुंचे, प्रयाग में माघ मेला लगा हुआ था, उस समय मकर संक्रांति के दिन महाप्रभु ने वहां पर स्नान किया और प्रयाग में महाप्रभु 10 दिन तक रुके थे। और इस प्रकार से कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये जो वृंदावन गमन की जो लीला है, वृंदावन गमन प्रभु चरित्र अनंत सहस्त्र वदन यार नाही पाय अंत। सहस्त्र फनों से यदि शेषनाग भी इनका वर्णन करेगा तो भी जो है वो कम है, इतना वृंदावन गमन। मैं तो केवल संकेत मात्र बता रहा हूं, यहां गए वहां गए, लेकिन वास्तव में जो अनुभव महाप्रभु ने किया और जो लीलाएं वहां पर की और जो प्रचार वहां पर किया और वैष्णवों को बनाया, उसका वर्णन अनंत शेष भी नहीं कर सकते। और इतनी ये अपार और मधुर है महाप्रभु की लीला। चैतन्य चरित्र यही अमृतेर सिंधु जगत आनंद भाषाई यार एक बिंदु। चैतन्य चरित्र कैसा है? ये अमृतेर सिंधु, ये अमृत के सिंधु के समान है और सारे जग को, जगत आनंद भाषाई तार एक बिंदु, सारे जगत को आनंदित कर सकती है, इसकी केवल एक बूंद भी कोई चखता है। तो हमारा सौभाग्य कि हमें इस प्रकार से चैतन्य चरित्र अमृत का आस्वादन करने मिल रहा है। हमें कई सारे भक्त के मेल भी आए हैं कि इस प्रकार से अमृतसर से कई सारा कांग्रीगेशन भक्तों का जो है वो इन्हें जो है वो सुन रहा है और चैतन्य चरितमृत का अध्ययन कर रहा है। यूएस के एक भक्त है, वो उन्होंने मेल लिखा है कि किस प्रकार से वो भी जो है वो इस प्रकार से चैतन्य चरितमृत के अध्ययन में लगे हुए है और सारे भक्त आनंदित है। क्यों आनंदित है? क्योंकि ये अमृत की सिंधु है और हमें इसकी एक बूंद भी काफी है हमें इसमें जो है वो डुबाने के लिए। तो अभी महाप्रभु 10 दिन तक प्रयाग में रुके, वहां पर क्या क्या हुआ, और जो महाप्रभु निकले थे 16वें अध्याय में रामकेली से निकल के, तो जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वहां पर उन्हें दीक्षा मिली हुई है और वो कब से महाप्रभु को मिलना चाहते हैं, तो क्या वो रामकेली छोड़ के महाप्रभु को आके मिलेंगे, और इन 10 दिनों तक महाप्रभु ने प्रयाग में क्या क्या किया, इसको यदि आपको सुनने की अभिलाषा है तो बने रहिए और मिलेंगे हम कल ठीक शाम को 5:30 बजे। एक प्रश्न हम लोग लेंगे, एक प्रश्न पूछा गया था, हमारे पास 2-3 मिनट और है जो, हाँ सबसे पहले मैं भूल गया, अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 1, श्लोक क्रमांक 1 जो संपूर्ण लीला का सारांश हमें बताता है वो श्लोक है, 18वां अध्याय का पहला श्लोक। वृंदावन स्थिरचरान नंदयन स्व अवलोकनय आत्मानं च तदा लोकात गौरांग परितो भ्रमत, गौरांग परितः अभ्रमत। इस प्रकार गौरांग महाप्रभु जो है वो भ्रमण किया, वृंदावन का उन्होंने भ्रमण किया। किस प्रकार से? वृंदावने कैसे भ्रमण किया? स्थिर चरान नंदयन, स्थिर वस्तु, चल वस्तुएं, चल मतलब जो चलने वाले लोग, स्त्री, वृद्ध, अबाल, और जो अचर वस्तु, स्थिर वस्तु का अर्थ है लता, वेली, वृक्ष, इनको भी महाप्रभु ने जो है वो नंदयन स्व अवलोकनये, अपने स्वयं की चितवन से उन्होंने प्रफुल्लित कर दिया और स्वयं भी उसका आनंद लिया। और जो भी व्यक्ति तद लोकान, जो भी लोग उन्हें देखते वो तुरंत वहां पर भक्त बन जाते और उनके जीवन में प्रसन्नता छा जाती। इस प्रकार से महाप्रभु ने जो है वो वृंदावन का भ्रमण किया, ऐसा कविराज गोस्वामी सारांश रूप में लिखते हैं। तो जो प्रश्न मैं बता रहा था, प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, बहुत आनंद की बात है कि भक्त काफी मन लगाकर सुन रहे हैं और ध्यानपूर्वक समझने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये प्रश्न मध्यलीला से पूछा गया था कि जो हमने चर्चा की थी 15वें और 16वें अध्याय में, जब महाप्रभु कुलीन ग्राम के भक्तों को मिलते थे तो कुलीन ग्राम के भक्तों को वैष्णव का वर्णन करते हुए महाप्रभु ने वैष्णव के तीन स्तर बताए थे, वैष्णव, वैष्णवोत्तर और वैष्णवोत्तम, गुड, बेटर, बेस्ट। जो केवल एक बार नाम लेता है उसे महाप्रभु ने कहा था वैष्णव है, जो निरंतर यहार मुख यहार वदने निरंतर कृष्ण नाम, तो वो था वैष्णवतर, जो सदैव कृष्ण का नाम लेता है। और जो वैष्णवतम है, यहार दर्शन मुख्याई से कृष्ण नाम तहर जानी हतुमी वैष्णव प्रधान, जिनके मुख कमल को देख के ही कृष्ण का नाम उच्चारण करे कोई, वो है सर्वश्रेष्ठ वैष्णव। तो प्रश्न यह पूछा गया कि हमें कैसे देखना चाहिए और हमें इनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये अलग अलग वैष्णव के साथ। तो इस व्यवहार का सूत्र रूप गोस्वामी, उन्होंने जो किताब लिखी है उपदेशामृत, केवल 11 श्लोक है इसमें, और इसके 5वें श्लोक में कविराज रूप गोस्वामी जो है वो हमें बताते हैं सूत्र रूप में कि किस प्रकार से अलग अलग वैष्णव के साथ हमारा व्यवहार होना चाहिए। कृष्णे इति यस्य गिरितम मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्त मीशम शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदा आदि शून्य रुदमिप्सित संग लब्ध्या। तो यहां पर भी वो तीन वैष्णव के स्तर बताते हैं और तीनों के साथ अलग अलग व्यवहार बताते हैं। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा द्रियेत, जो व्यक्ति कृष्ण का नाम अपनी गिरा यानी वाचा से एक बार लेता है, और वाचा से जो कृष्ण का नाम लेता है उसका हमें मन से प्रणाम करना चाहिए। कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा द्रियेत, मन से हमें उसका प्रणाम करना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है, जिसकी दीक्षा हो गई है, दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्त मीशम, उस व्यक्ति को हमने दंडवत प्रणाम करके उसका प्रणाम करना चाहिए। और जो व्यक्ति उसके अगला स्तर पर, कृष्णेति यस्य गिरितम मनसा द्रियेत दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन्त मीशम शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदादि शून्य हृदयम, जिसके हृदय में दूसरों के प्रति निंदा जो है वो शून्य है, जो कभी किसी की निंदा नहीं करता और भगवान की सेवा में सदैव रत है, उस व्यक्ति की शुश्रूषया, उस व्यक्ति के हमने प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे तीन स्तरों में रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हमने इन लोगों की जो है वो किसकी सेवा करनी चाहिए, किसको मन से प्रणाम करना चाहिए। ये सारा वर्णन हमें रूप गोस्वामी के उपदेशामृत जो किताब है उसमें मिलता है। और विस्तार से यदि आपको और चाहिए तो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में जो उद्धव गीता है वहां पर भी उद्धव को उपदेश देते हुए कृष्ण बताते हैं कि वैष्णव के तीन स्तर क्या है और इन तीनों स्तरों के साथ हमारा व्यवहार जो है वो क्या होना चाहिए, उसके विस्तार से जो है वो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में वर्णन पाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।